So today is 19th of April 2017 and we are speaking from Mantra 10 of Sri Ishopanishad. Anya deva devahur vidyayanya adahur vidyaya iti sushrum dhiranam ye nastad vichachak sire. Translation: the wise who have explained that one result is derived from culture of knowledge and different result is derived from culture of nations. The meaning behind is Hindi ki English? Hindi? Iska arth ye hai ki jo buddhiman log hain wo kehte hain ki jab hum sahi vidya ko padhte hain, सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसका एक परिणाम होता है. और जब हम दुनियादारी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका दूसरा परिणाम होता है. फॉर एग्जांपल, अभी आप भगवद गीता सुन रहे हैं और उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं तो लाइफ में आपके एक परिणाम होगा. और समझो आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या स्टिचिंग सीख रहे हैं, टेलरिंग सीख रहे हैं या नर्सिंग सीख रहे हैं या और कुछ सीख रहे हैं, तो उसको कहते हैं नेशंस. नेशंस मतलब दुनियादारी के बारे में सीखा हुआ ज्ञान जो दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी होता है. जैसे आप अभी नर्स हो तो आपको भी नर्सिंग सीखना ज़रूरी है क्योंकि आपको वो प्रोफेशन है आपका, तो उसको नेशंस कहते हैं. बुरा नहीं है उसमें कुछ, बट वो एक वर्ल्ड का कर्तव्य है. अभी आपको आपकी मम्मी से आप सीख रहे हो कि कैसे माँ बनना है, बेटा जन्म देने के बाद में क्या कर रहे हैं, तो वो दुनिया का अभी बच्चा होने के बाद में ज़रूरी है वो बच्चे को पालने के लिए. या कोई प्लम्बर है तो उसको प्लम्बिंग का नॉलेज सीखना ज़रूरी है तो उसको फिर बिजनेस मिलेगा. लेकिन दोनों चीज़ों का परिणाम अलग मिलेगा. एक चीज़ से पैसा मिलेगा घर चलाने के लिए, एक चीज़ से आत्मा का उद्धार का मार्ग प्राप्त होगा, ये बताया उसने. लेकिन इसमें कैच है. समझो आप प्लम्बिंग सीख रहे हो और प्लम्बिंग से आपके घर में पैसा आ रहा है, लेकिन अगर वो प्रोफेशन आप जब करते हो तो भगवान की याद में करते हो, भगवान के लिए करते हो और प्रामाणिकता से करते हो, ईमानदारी से करते हो, चीटिंग नहीं करते हो उसके अंदर, जो ज़रूरी है वही करते हो, कस्टमर को उल्टा सुलटा बताते नहीं हो, डबल काम नहीं कराते हो उससे, सिंसियर जितना है सिंसियर बताओ, इसमें ये फॉल्ट है, इतना खर्चा आएगा, इतना टाइम लगेगा, तो एक ईमानदारी हो गई, प्रामाणिकता हो गई. और जो उसमें से पैसा आएगा वो आपके परिवार को भगवान की भक्ति में लाने के लिए अनुकूल आप कर रहे हो, तो फिर वो प्रोफेशन नेशंस नहीं होता है, वो प्रोफेशन भी दिव्य बन जाता है. वो आपके हाथ में है कि आपको कैसे करना है. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एज एडवाइज इन 13th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, वन शुड कल्चर नॉलेज इन द फॉलोइंग वे. 13वें अध्याय के अनुसार इस प्रकार से ज्ञान अपनाना चाहिए. वन शुड बिकम अ परफेक्ट जेंटलमैन and learn to give proper respect to others. एक सभ्य गृहस्थ आदमी को बनना चाहिए एक, और सबको आदर देने को सीखना चाहिए. शिक्षाशास्त्र में हम क्या सीखते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, सबको आदर देने का आदेश दिया गया है. दूसरा कहा है, वन शुड नॉट पोज हिमसेल्फ एज अ ग्रेट रिलीजनिस्ट सिंपली फॉर द नेम एंड फेम. मैं कितना धार्मिक हूँ ऐसे लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है. कलयुग का सबसे बड़ा दोष क्या है? कलयुग का सबसे बड़ा दोष दो है, किसी को पता है? हिपोक्रेसी मतलब दाम्भिकता, ढोंग, और सेकेंड वन, या आप लोगों को ना फिट मालूम होना चाहिए. नहीं, कलयुग का बता रहा हूँ मैं, मानवीय जीवन का डिफेक्ट नहीं बता रहा हूँ. कलयुग में होने से आप पर दो चीज़ हावी है, वो दो चीज़ से अगर आप भगवान के भक्त नहीं हैं तो आप पर वो हावी है दो चीज़, वो मुक्त नहीं हो सकते आप उससे. एक है हिपोक्रेसी, अगर आप भगवान के भक्त नहीं हैं तो आपके अंदर हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा. आपको समझेगा भी नहीं कि आप हिपोक्राइट हो, लेकिन आप दिखावा करोगे, ढोंग करोगे. ये स्वभाव है मनुष्य का कि मैं जो नहीं हूँ दिखाने का प्रयास करता हूँ कि मैं कितना बढ़िया हूँ, और समय आएगा तो मैं मेरा दोष छुपाऊंगा और दिखाऊंगा मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ. ये अपने स्वभाव में इतना घुस गया ना अंदर कि अपने को पता भी चलता नहीं। कभी कभी ना चोरी इतनी घुस जाती है आदत में कि मैं चोरी कर रहा हूँ भी आपको समझ में नहीं आता है। आपको लगता है मेरा अधिकार ही है, जो उठाया हुआ है, जो बचा हुआ दिखता है ट्रेन में, वो सब मेरा ही है। देखो ना, आप कभी ट्रेन में, जब ट्रेन उतरती है ना, तो कैसा होता है मालूम है आपको? आप ट्रेन उतर के सामान लेके चले जाते हो, कुछ बच्चे धाड़ करके ट्रेन में घुसते हैं और धड़ाधड़ ढूंढते हैं उसके अंदर क्या क्या है। उनको लगता है कि जो भी बचा हुआ है वो सब मेरा है और मुझे ही मिलना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई भूल गया तो अच्छा है, पानी का बोतल भी भूल गया तो अच्छा है, पानी का बोतल भी मेरा ही है। 2 मिनट के बाद आप ट्रेन में जाओगे ना, आपको कुछ भूल गया तो आपको नहीं मिलेगा ट्रेन में, क्योंकि कुछ लोगों के स्वभाव में इतनी आदत हो गई है, इतना घुस गया उसके अंदर कि उसको वो गलत लगता ही नहीं है। तो बताइए दूसरी बात कौन सी है वो कलयुग में जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर? झगड़ा, कलह, दंभ और कलह, ये 2 कलयुग का सबसे प्रधान इफेक्ट है। बाकी सब कुछ भी है लेकिन वो सेकेंड लेवल पे है। लेकिन अगर कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर क्या है अगर पता करना है, तो सबसे बड़ा झगड़ा है। और देखो, आप सोचो इसके बारे में, कहाँ कहाँ झगड़ा घुसा हुआ है। देखो, पति पत्नी के बीच में भी घुसा हुआ है, भाई बहन के बीच में घुसा हुआ है, सासू और ननंद के बीच में घुसा हुआ है, दीर और ननंद के बीच में घुसा हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी में घुसा हुआ है, भाई भाई के अंदर घुसा हुआ है, 2 परिवार के अंदर घुसा हुआ है, बिल्डिंग में, सोसाइटी में घुसा हुआ है, काम के जगह पर कलीग्स के साथ में अंदर प्रवेश कर चुका है, ट्रेन में पैर रखते ही झगड़ा हो सकता है, जगह मिली तो झगड़ा हो सकता है, जगह नहीं मिली तो झगड़ा हो सकता है, सामान रखने को जगह मिला तो झगड़ा हो सकता है, नहीं मिला तो झगड़ा हो सकता है, ट्रेन में लाइन में खड़े हो तो झगड़ा हो सकता है, अरे क्या कर रहा है, सो रहा है क्या अंदर, इतने देर से खड़े हो उधर, जल्दी जल्दी टिकट दे दो, वो झगड़ा हो रहा है, यहाँ से वहाँ कोई घुस रहा है बीच में, ये बीच में कोई घुस रहा है, इतना झगड़े का जो है ना प्रोबेबिलिटी, मतलब शक्यता इतनी बड़ी है हुए कलयुग में। और जैसे कलयुग आगे बढ़ता है ना, वैसे वो बढ़ने वाला है। और क्यों बढ़ता है वो? क्योंकि डिस्टर्बेंस इतना जीवन में लोगों के है, इतना लोगों के जीवन में डिस्टर्बेंस है कि वो डिस्टर्ब कंडीशन में कुछ सहन नहीं होता है उसको, तुरंत झगड़ा कर लेते हैं। त्रस्त है लोग बहुत, किधर भी जाओ परेशान है लोग, तो परेशानी में आपने कुछ कर लिया तो उसको सहन नहीं होता है वो। जैसे ऑलरेडी गर्मी से परेशान, ऑलरेडी पसीना आ रहा है, ऑलरेडी ट्रेन चुक उसकी मिस हो चुकी है, और चौथी ट्रेन में जाते ही आपने उसको धक्का दिया, उसका बैग खींच लिया, तो वो एकदम पूरा सटका हुआ है उसका दिमाग ऑलरेडी, है ना। और ये कॉमन है, अभी मुझे गर्मी का तकलीफ है, बाहर निकलते ही मेरा दिमाग ऐसा गर्म हो जाएगा, उसमें कुछ गाड़ी के बीच में कोई आदमी आया तो मैं तुरंत गाड़ी खोल के गाली देगा उसका, तुरंत बिकॉज ऑलरेडी मैं परेशान हूँ। मैं सब पीसफुल समुद्र किनारे ठंडी हवा में ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, और कोई बीच में आ गया तो बेटा बीच में मत आना, संभल के चलना, ऐसे बोलूँगा उसको मैं ठंडे दिमाग से। लेकिन अगर गर्मी के मौसम में कोई मिलेगा ना तो मैं उसको गाली दूंगा और उतर के मार भी सकता हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ। और कलयुग का एक और लक्षण है, 7 लक्षण भागवत में दिए हैं, प्रायेण अल्पायुषा कलावस्मिन युगे जनः, आप लिख सकते हैं श्लोक नहीं उसका अनुवाद, प्रायेण अल्पायुषा कलावस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुतः। ये कलयुग के लक्षण हैं, अभी आप लिखते जाओ। पहला क्या बताया है? शॉर्ट लाइफ, कलयुग में सब लोग शॉर्ट लिव्ड है। आपके पास मोबाइल है, उधर भी लिख सकते हो, फाइल के अंदर मोबाइल खोल के फाइल बना दो। कलयुग का जीवन शॉर्ट लिव्ड है, सबका आयुष्य छोटा है। आपको लगता है कि मैं 70 साल जिया, लेकिन पहले लोग 125 साल जीते थे। हमारे पास रिकॉर्ड है साधुओं का, 144 ईयर्स, 146 ईयर्स, 175 ईयर्स, अभी की बात है। और अभी वो 100 को टच किया तो भी उसका पेपर में नाम आता है, और थोड़ा कुछ करता नहीं आजकल, 75 में उसका मना लेते हैं हीरक महोत्सव उसके आगे मालूम नहीं क्या होता, नहीं क्या है डायमंड महोत्सव, हीरक महोत्सव, हीरक। तो एक हो गया प्रायण अल्पायुषा, मतलब अल्पायुष, शॉर्ट लाइफ, कलावस्मिन युगे जना, मंद, मंद यानी वो बहुत डल है, डल यानी आलसी है बहुत। हम सब लोग अगर बोलेंगे ना कि ए पंखा छोटा करने का है, कोई रिमोट है क्या हाथ में, रिमोट तो मेरे तो इधर से बैठ के ही पसंद करूंगा कि इधर से कम किया जाए, तो वहाँ जाने का, उधर अभी उधर से उठ जाके उसके भी छोटा करने का, अरे वो लाइट बंद करने का है, कोई कर सकता है लाइट बंद? यू कैन क्लोज दैट लाइट, तभी वो चल रहे इसलिए वो तुरंत जाके बंद कर दिया, लेकिन बैठ के बोलता था ना मैं जरा जाके बैठ करो, सर पहले क्यों नहीं बोला। हाँ तो कलयुग का स्वभाव है ये मंद, यानी कि हम लोग ना सब लोग डल हो गए कलयुग में। सुमंद मतयो मतलब मति है ना हमारी मति, यानी कि कॉन्शियसनेस जो हमारा भाव है मन का वो भी मंद हो गया है। हम लोग सोचने के लिए भी, अरे आपने कल सोचा क्या उसके बारे में, नहीं अरे थक गया था बहुत, मैं भी आज सोचूंगा उसके बारे में। जैसे मेरी वाइफ मुझे बोल रही है कि वो हमारे बेडरूम में जो चेंज करना है उसके बारे में कब बैठेंगे, तो मैं बोला अभी थक गया हूँ कल बैठेंगे हम लोग। मतलब सोचने के लिए भी हम लोग आलसी है, सोचने के लिए भी परेशान है। ऐसा नहीं कि बॉडी थका हुआ है माइंड एक्टिव है, नहीं नहीं बॉडी के साथ माइंड भी ढीला हो ठंडा हो गया पूरा, ये कलयुग का स्वभाव है। तो मंद मतलब आलसी, सुमंद मतयो मतलब सोचने में भी आलसी। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या मतलब क्या, एकदम बैड लकी है सब लोग, कलयुग के लोग अनलकी लोग हैं। क्यों अनलकी है, क्योंकि कलयुग इतना दोषों से भरा हुआ है, इतना तकलीफ है कलयुग में। कलयुग दोषे निधिर राजन अस्ति एक महान गुण, ऐसे बताया कि कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन उसमें एक अच्छा गुण है ऐसा कि इतना दोष होने के बाद भी ना उसके अंदर भगवान का नाम है, कलयुग के अंदर ही है वो। और वो अगर कोई पकड़ लेता है उसको तो सारे दोषों से कलयुग के वो मुक्त हो सकता है। लेकिन लेकिन और लेकिन और लेकिन ऐसा भाग्य होने पर भी वो भाग्य लेने के लिए जाता नहीं है वो, बोले सर टाइम नहीं मिलता है। सर आप बोल रहे जब करो, वो कहाँ से टाइम निकालेंगे, सुबह उठते ही काम शुरू होता है हमारा, फिर काम पे जाना पड़ता है, फिर थक जाते हैं, बच्चे हैं ये वो है, सर टाइम नहीं मिलता सर। बोले मंदिर में आओ चर्च में जाओ, नहीं सर टाइम नहीं मिलता, संडे को ना बहुत काम रहता है, कपड़ा धोने का रहता है, नींद पूरी करने का रहता है, वो बच्चों का स्टडी लेने का रहता है, सर टाइम नहीं मिलता सर, एक ही दिन मिलता है हफ्ते का। और छुट्टी के दिन, अरे छुट्टी के दिन परिवार के लोग डिमांड करते हैं इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, मंदिर में किधर आने का सर। इसका एक ही है इंटरप्रिटेशन, बैड लक। कोई आपको बोलेगा कि आप ना यहाँ से रिक्शा पकड़ो 22 रुपये हो जाएगा, ट्रेन टिकट निकालो चर्च गेट का 15 रुपये हो जाएगा, आपको चर्च गेट में पहुँचने के बाद में मैं एक कूपन दूंगा यहाँ से, वो कूपन दिखाएगा ना तो एक आदमी वहाँ खड़ा है वो कूपन पहचानेगा आपका, बराबर टैली करेगा, आपको 1 करोड़ रुपये देगा, तो आप लोग क्या करेंगे, हाँ भागेंगे? कुछ लोग बोलेंगे सर इतना लंबा कौन जाएगा धूप में, इतनी धूप है सर, इतना तकलीफ है, बुखार आ रहा है सर, तो ट्रेन में बहुत भीड़ है सर, मैं नहीं जा सकता, ऐसे बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको। आग लग रही है आपके घर पे फिर भी वो ऐसा टर्न करेगा, कोई उठने को भी तकलीफ है उसको, बोलो क्या अरे घर में आग लग रही है, चिल्ला रहा है कोई फिर भी वो सो रहा है, ही इज वेटिंग टिल द फायर कम्स क्लोजर टू हिम देन ही विल गेट अप एंड गो। ऐसे कहानियां बनाई हुई है, मैं भी सच नहीं है, लेकिन मैसेज क्या है उसके अंदर कि इतना अनलकी आदमी है कलयुग का, इतना इजी बना के रखा है ना तो भी आपने को जाने को तकलीफ है। और बोल दे कि आप बोल रहे हैं सर 40 रुपये के अंदर 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन कभी सच है क्या ये, ऐसा कैसा हो सकता है 40 रुपीज खर्च करने 1 घंटा खर्च करने के बाद में 1 करोड़ मिलेगा, सर ये लगता नहीं सच्चा है, मैं नहीं जाऊँगा सर, मेरे को श्रद्धा नहीं इसके ऊपर, ये भी बैड लक है कि सत्य है फिर भी उसको श्रद्धा नहीं उसके ऊपर, है ना। तो कलयुग के 2 लक्षण क्या हो गए, झगड़ा और हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य के बारे में बात कर रहे थे, बैड लक, एवरीबडी इज अनलकी, क्योंकि इतना सब होने बावजूद भी उसको इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। हम लोग क्या सेकेंड श्लोक में क्या बोलते हैं प्रार्थना में, दुर्दैवम ईदृशमिह यदि न अनुरागः, सेकेंड श्लोक में बोलते हैं ना, नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता न स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशमिह यदि न अनुरागः, इतना सब होने पर भी भगवान के नाम में किसी को रुचि नहीं है, यदि न अनुरागः, जनों को सब पब्लिक को अनुराग नहीं है इसके अंदर, इतना सब ईजी होने के बाद भी। मंद भाग्या मंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुतः, हमेशा परेशान रहता है कलयुग का आदमी, कलयुग के अंदर आदमी हमेशा परेशान रहता है। उपद्रुतः मतलब उपद्रव से त्रस्त रहता है, उपद्रव का मतलब क्या है, परेशान, कोई ना कोई बच्चा रो रहा है, कोई पड़ोसी कचरा फेंक रहा है, गाली दे रहा है नीचे से, कोई नीचे आके बच्चा तुम्हारा घर पे सो रहा है, नीचे बच्चे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के खेल रहे हैं, या कुत्ता चिल्ला रहा है रात को 2 बजे, 50 कुत्ते कोई कुत्ते को खा रहे हैं, आपकी नींद खराब हो रही है, आपको उसको इतना थक गया आप उठ के कुत्ते को मारने के लिए भाग सकते नहीं हैं, ना कुत्ते का आवाज़ बंद हो सकता है। ये रोज की बात है यार, कलयुग में कहीं शांति नहीं है, सब जगह परेशान है लोग, एवरीवेयर दे आर डिस्टर्ब्ड। ट्रेन में जाओ इतने लोगों की भीड़ खड़ी है, कोई हंसता है क्या ट्रेन में? आप मुझे बताओ, ट्रेन की भीड़ में दादर में कभी देखो एक भी आदमी कोई हंसता है? ऐसा ही चेहरा सबका, और ट्रेन में घुस गए तो भी वैसा ही चेहरा, कोई स्माइल नहीं देता किसको, उतरने के बाद भी वही जा रहा है ट्रेन पे तो भी वही चेहरा, बस में चल रहा है वही चेहरा, ऑफिस में आया तो भी कोई हंसने का, बहुत चेहरे में हंसी कैसे आएगी? इतनी परेशानी है तो हंसी कैसे आ सकती है? हंसी तब आएगी जब आपका परेशानी नहीं होगी आपको, है ना? तो ये बात सब कहाँ से निकली? दाम्भिकता से। वन शुड नॉट पोज हिमसेल्फ एज ए रिलीजनिस्ट, मैं भगवान का भक्त हूँ बड़ा। किसके लिए करते हैं वो? नाम के लिए, क्या आप मुझे बोलना चाहिए कि मैं बड़ा भक्त हूँ भगवान का, नाम और कीर्ति के लिए लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट बिकम सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फॉर अदर्स बाय द एक्शंस ऑफ बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताइए, रूपा जी ने बताई कितनी इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को हम लोगों ने सबको एक बात दिन में करना चाहिए, कोई महात्मा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात मन में फिक्स करना चाहिए कि मेरी वजह से किसी भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी तरफ से मेरा विचार हो या मेरा कुछ बोलना हो या मेरा कोई एक्शन हो, इससे किसी भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा है ना ये? जब आप सोचोगे ना ऐसा, तो लोग भी आपके बारे में सोचेंगे और आपको कष्ट नहीं होगा। पहले आपको तय करना है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मेरे विद्यार्थियों को, मेरे कलीग्स को, मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरे नेबर को, या रास्ते के लोगों को, या ट्रेन के लोगों को, या मेरे कंपनी में, मेरे ऑफिस में, किधर भी किसको कष्ट नहीं होना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, अगर होना ही है कुछ तो उनको लाभ ही होना चाहिए मुझे मिलने से, खुशी होनी चाहिए मुझे मिलने से, दुख नहीं होना चाहिए कभी भी। ये एक संत का विचार है और हमेशा हमको इसी विचार से चलना चाहिए। Nobody should be disturbed by me. And if at all anything has to happen, they should be happy by meeting me and they should be benefited by meeting me. Fourth, one should learn forbearance, matlab tolerance, even in the face of provocation from others. Mahanta ki vyakhya manam hai kya hai? Mahanta ki vyakhya ye hai ki log aapko uksane ka prayas kar rahe hain lekin aap ukaste nahi hain. सिचुएशन बहुत प्रोवोकिंग है, आपको एंगर आने का चांस है उसके अंदर, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता, वो महान व्यक्ति का व्याख्या बताया गया है। ग्रेटनेस इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ नॉट गेटिंग एंग्री इन द प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कितना भी आपको कोशिश कर रहे हैं कि गुस्सा आ जाए मैडम को, सर को गुस्सा आ जाए, लेकिन वो गुस्सा नहीं कर रहे, शांति से डील कर रहे, तो उसको महान व्यक्ति कहते हैं। तो दूसरों के या परिस्थितियों के सामने क्रोध करना या एक्साइट होना, उत्तेजित होना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में लिखा है, वन शुड सर्च आउट फॉर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हु कैन लीड हिम ग्रेजुअली टू द स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, एंड वन मस्ट सबमिट हिमसेल्फ टू सच अ मास्टर, रेंडर सर्विस टू हिम एंड आस्क क्वेश्चंस टू हिम। देखो पहले ना अच्छा इंसान होने के लक्षण दिए हैं, अच्छा इंसान बनने के बाद ही हम भगवान का भक्त बन सकते हैं। ये आपको लोगों को चीटिंग करने की प्रवृत्ति है, झूठ बोलने की आदत है, तभी देखो तकलीफ देते रहते हैं और जाके मंदिर में जब भी करते हैं और दीक्षा भी ले चुके हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। अच्छे चरित्र के बिना आदमी भगवान का भक्त नहीं बन सकता है, इसलिए अच्छा चरित्र, अच्छा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। बिना अच्छे कैरेक्टर के आप कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, चाहे आप 192 माला रोज कर रहे हैं, 22 घंटा रोज जब कर रहे हैं, 2 घंटा सोते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हमारे अंदर की जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, लोगों को दर्द देने की प्रोपेंसिटी है, हाँ, लोगों को कष्ट देने की प्रोपेंसिटी है, और हम किसी को हेल्प नहीं कर सकते, झूठ बोलने की आदत है हमको, तब तक हम भगवान के लिए प्रसन्नता नहीं ला सकते। इसलिए पहले से बताया कि दूसरों को रिस्पेक्ट दो, दाम्भिकता मत करो, दूसरों को कष्ट मत दो, किसी का चिंता का कारण मत बनो आप, और सहनशीलता अपनाओ। उसके बाद में लिखा है कि गुरु ढूंढो, उसके बाद में आप गुरु के ढूंढने के लिए योग्य बनते हो। गुरु ढूंढेंगे, उनको स्वीकार करो, उनके चरणों में अपना जीवन अर्पण करो, वो जो कहेंगे वैसा आज्ञा पालन करो और उनकी सेवा करो, और कुछ प्रश्न हो तो उनको पूछो। उसके बाद में कहा है, ऑन ऑर्डर टू अप्रोच द प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वन मस्ट फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स गिवन इन स्क्रिप्चर्स। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमको आत्मा की शुद्धि चाहिए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और प्राप्त करना है तो आपको कुछ नियम पालन करने ही पड़ेंगे। आप जीव की हत्या करके उनका मांस खा के ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भगवान की अनुभूति मुझे होगी, कैसे हो सकती है? जो हिंसा कर रहा है, किसी को कष्ट दे रहा है, पहले लिखा है ना यहाँ पर सोर्स ऑफ एंग्जाइटी, ये तो एंग्जाइटी भी नहीं है, ये तो सोर्स ऑफ पेन है, किसी को मार के जब खाते हैं तभी। तो वो जो नियम दिए हुए हैं उसको पालन करना चाहिए। किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए, किसी की हत्या करके उसका भोजन नहीं करना चाहिए, पाप का धन का कमाई खाना नहीं चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, परस्त्री परपुरुष के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी की श्रद्धा को तोड़ना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे अरे उसने ऐसा किया, लगता नहीं था, कितने अच्छे इंसान थे वो, उसने ऐसा किया, उसने चोरी किया, उसने खून किया, उसने व्यभिचार किया, उसने डकैत किया, बाप रे, मतलब लोगों की श्रद्धा आपने तोड़ दिया। पाप एक जगह पर है, और वो पाप करने के बाद जो श्रद्धा लोगों की टूटती है ना, वो महान पाप होता है। इसलिए विश्वासघात 7 पाप से एक सबसे बड़ा पाप कहा गया है, विश्वासघात। वन मस्ट बी फिक्स्ड इन द टेनेट्स ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। शास्त्र के अंदर जो नियम दिया है ना, उसी के दायरे में आपको जीवन चलाना चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मला तो ऐसा वाटता कि ऐसा केले पाहिजे, मेरा विचार ऐसा है, तो अपना खुद का शास्त्र बनाते हो। वो कैसा होता है, इट्स लाइक खिचड़ी, मम्मी ने कुछ कहा था वो अच्छा लगा था, वो जोड़ दिया उसके अंदर, जो मम्मी ने कहा था जो अच्छा लगा नहीं था वो उसको कैंसिल कर दिया, उसमें से जो अच्छा लगा उतना ही लिया, जो पसंद नहीं आया छोड़ दिया उसको। पापा ने कितना बोला था उसमें से जो अच्छा लगा उतना लिया, पापा ने जो मतभेद हुआ था वो छोड़ दिया उसको, और खुद का एक विचार है कि ऐसा होना चाहिए, भगवान को ना खड़े खड़े ही प्रणाम करना चाहिए, झुकने की जरूरत है, आप हृदय से हाथ जोड़ो, मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ मुझे क्या करना है, शास्त्र बोल रहा है झुक के प्रणाम करना चाहिए, आप बोल रहे हैं नहीं जरूरत नहीं उसकी, मतलब मनगढ़ंत बातें। तो दादा मामी टीचर आई बाबा इस सब का मिलके जो भी एक खिचड़ी बना के अपना खुद का भी डाल के अपना एक खुद का शास्त्र बनाते हैं, बोलते मैं तो सोचता हूँ ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ पर लिखा है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्र जो है ना वो भगवान की तरफ से आता है। देखो आप, कुरान भी भगवान की तरफ से आया है, बाइबल भी भगवान की तरफ से आया है, गीता भी भगवान की तरफ से आया है, बोधि संहिता भी भगवान की तरफ से आया है, उसी को स्क्रिप्चर मानते हैं, और उस पर जो कमेंट्री है उसको भी स्क्रिप्चर मान रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो कुछ लिखते हैं ना, हाउ टू विन अ हार्ट ऑफ अ गर्ल, 10 सजेशंस टू मेक अ गर्लफ्रेंड हैप्पी, ये स्क्रिप्चर नहीं है ये दुनियादारी की चीज़ें हैं। हाउ टू लूज 10 केजीज इन 10 डेज, किताब निकलती बाजार में, लेकिन वो स्क्रिप्चर नहीं है। स्क्रिप्चर उसी को कहते हैं जो भगवान की तरफ से आया हुआ है। तो वन शुड रिमेन इन द टेनेट्स, मतलब दायरे में रहना चाहिए उसके। वन शुड कंप्लीटली रिफ्रेन फ्रॉम प्रैक्टिसेस विच आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा के उद्धार के लिए जो भी अनुकूल नहीं है उसको छोड़ के जीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रस्ते का खाना जो भगवान को भोग नहीं लगाया है, वो खाना अगर भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो भक्त कभी भी रस्ते पर खाते हुए नहीं मिलेगा आपको। रेस्टोरेंट में खाना जो है वो भगवान को ऑफर नहीं किया जाता है, और वो पता नहीं किसने बनाया है, बनाने वाला कल वेश्या के पास गया था कि मालूम नहीं आपको, या बनाने वाला दारू के नशे में कल खाना बनाया था कि पता नहीं आपको, तो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते, क्योंकि उनको पता रहता है कि इसका बनाने वाले का चेतना क्या था उस समय, भाव क्या था, वो मालूम नहीं मुझे, तो वी डोंट टेक रिस्क। वही खाना खाते हैं जहाँ हमको पता है कि कौन खाना बना रहा है और कहाँ से आ रहा है पैसा, चोरी का पैसा आ रहा है, पाप का पैसा आ रहा है, कि ईमानदारी का पैसा आ रहा है, और कौन बना रहा है, फिर हम उसके घर में खाना खाते हैं। तो मतलब क्या है, अनुकूल्य से संकल्प हो, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसी को अपनाते हैं, जो प्रतिकूल है हाँ उसको छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है कि जो कार्य या जो आदतें भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़कर जीवन चलाना चाहिए। दसवां, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, वन शुड नॉट एक्सेप्ट मोर देन ही रिक्वायर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या है, संचय नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे अरे बाप रे, तो म्यूचुअल फंड में डाला उसका क्या करने का, LIC में डाला है, म्यूचुअल फंड में डाला है, बैंक में FD में रखा है, तो उसके लिए प्रोविजन शास्त्र में दिया है। ये किताब जिसने लिखा है ना, इनका नाम है रूप गोस्वामी, इन्होंने ही दूसरे किताब में लिखा है कि भक्त को भी सेविंग करना चाहिए, और उन्होंने गाइडलाइन दिया है कैसे सेविंग करना चाहिए। वो कहते हैं कि भक्त को अगर 100 रुपये इनकम है तो 50 रुपया उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, बचा हुआ 50 रुपये में 25 रुपया उसको बुढ़ापे के इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए सेविंग के रूप में, और 25 में अपना रोजी रोटी जो है गुजारा करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल लाइफ, सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग सॉरी, और हाई थिंकिंग। खुद के ऊपर 100 रुपया खर्च करेगा, और जब बोलेगा कि भगवान के मंदिर के लिए कुछ दे दो, चर्च के लिए कुछ दे दो, बोला नहीं पैसा नहीं है, वो गरीबी है सर, बच्चों को फी भरना है, ये करना है, लेकिन शाम को फिर आपको वो आइसक्रीम खाते हुए दिखाई पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखाई पड़ेगा, कहते तू भी कुछ पिक्चर के लिए गया हो 300 रुपया टिकट निकाल के, ऐसा है। तो हमारे के लिए इसका ये जो दिखा है ना इसके अंदर, वन शुड नॉट एक्सेप्ट मोर देन इट रिक्वायर्स, मतलब शरीर के भोग के लिए संचय नहीं करना चाहिए। संचय जो ना, संचय जहाँ पैसा इकट्ठा होता है ना, वहाँ पर कली का प्रवेश होता है, उसकी भी कहानी है शास्त्र में। जहाँ पर जरूरत से अधिक पैसा जमा करके रखा हुआ है वहाँ कली एंटर करता है, और कली एंट्री करते ही झगड़ा, दाम्भिकता, झूठ मूठ का सिचुएशन, उपद्रव, कष्ट, पीड़ा, मंदभाग्य, सुमंदमति सब लागू हो जाता है। इसलिए पैसा जमा करने में प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा अगर भगवान की सेवा में है, आपका जीवन भगवान की सेवा में है, तो आपके जीवन का जो पैसा लगता है वो भी भगवान की सेवा में है ना। अगर मेरा जीवन भगवान की सेवा में है तो जो मैं खा रहा हूँ वो भी भगवान की सेवा में, क्योंकि मैं खाता क्या हूँ, भगवान को लगाया हुआ वही खाता हूँ प्रसाद ना। अगर मैं भगवान का भक्त हूँ तो पहनूंगा भी वैसे जो भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल है, हेयर स्टाइल भी रखूंगा ऐसे जो भगवान के लिए अनुकूल है, तिलक लगाऊंगा तो भगवान के लिए अनुकूल है, धोती कुर्ता पहनूंगा, मंदिर में जाऊंगा तो एक प्रकार से रहूंगा, यहाँ से मंदिर जाऊंगा तो रिक्शा का टिकट निकालूंगा, ट्रेन का टिकट निकालूंगा, बस का टिकट निकालूंगा, कभी टैक्सी करूंगा, उसके लिए पैसे की जरूरत है कि नहीं। लेकिन सारा पैसा जो है ना वो ऐसा ही गोल गोल भगवान की सेवा में एंगेज है। जाता भी अगर घूमने को फैमिली को लेकर जाता हूँ तो कहाँ जाता हूँ, जगन्नाथपुरी, वृंदावन है ना। हमारा मतलब जो वीकेंड है या अपना वेकेशन है वो भी ऐसी जगह निकालते हैं जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है। रहते भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर नॉनवेज नहीं बनता है, दारू नहीं पीते लोग, ऐसा अच्छे होटल में या जानबूझ जहाँ पर जैन लोगों का होटल है, जहाँ पर कोई गुजरातियों का वैष्णव होटल है वहाँ रुकते हैं जाके। मतलब ऐसा मत समझो कि भक्त होने के बाद में आप सब बंद करने का है, कुछ कहीं घूमने का नहीं, जाने का नहीं, कुछ करने का नहीं, ऐसा नहीं। आइसक्रीम भी खाते हैं लेकिन आइसक्रीम वहाँ का खाते हैं जो दूध से बना हुआ है और उसमें कोई अंडा या कोई केमिकल डाला नहीं है, वो आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाना पाप नहीं है, आइसक्रीम कौन सा खाना उस पर डिपेंड है। तो हर चीज़ आप कर सकते हो, पैसा जमा भी कर सकते हो, लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि ये भगवान की सेवा के लिए, मेरा परिवार भगवान का भक्त बने या मेरा परिवार भगवान की भक्ति में बना रहे, इसलिए ये सेविंग मैंने रखा है ताकि वो अच्छी तरह पढ़ सके, उसका अच्छी जगह जॉब कर सके, अच्छी तरह भगवान की सेवा कर सके, विवाह होगा तो भी भगवान की सेवा में रहेंगे, बच्चे लोग भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, फी भरेंगे उनकी, लेकिन उनको भगवान की भक्ति में ट्रेनिंग देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छा चरित्र बनाएंगे उनका। लेकिन ज़रूरत के बिना संचय करना कली को घर में बुलाने जैसा है। मतलब टेलीविज़न घर पे लाना और केबल लगा के सब चैनल देखना, मतलब घर में वेश्या को लाके बिठाने जैसा है, क्योंकि टीवी में आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा जो आपको देखना नहीं चाहिए। टीवी लाना ख़राब नहीं है, वो जो केबल है ना, केबल वो लगने के बाद में जो दिखता है ना उसके अंदर, उसमें कंट्रोल रहता नहीं किसी का, सडनली वो कुछ आ जाता है उसके अंदर। अभी बोले तो मैं सुना था कि मैं दिल्ली गया था ना अभी, जिस दिन मेट्रो से मैं यात्रा कर रहा था उसी दिन नेक्स्ट डे पेपर में न्यूज़ आया कि राजीव नगर स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे जो बड़ा स्क्रीन है उसमें पोर्नोग्राफी फिल्म दिखाया गया। तो आप खड़े हो, आपका ट्रेन आ रहा है, देख रहे हो एडवर्टाइज चल रही है, कोई रेफ्रिजरेटर का है, कोई टीवी का है, कोई इसका है, कोई कुर्सी का है, कोई कुछ क्रीम का एडवर्टाइजमेंट है, सडनली उसमें पोर्नोग्राफी का एक फिल्म दिखाएगा पूरा कंप्लीट। अभी उसका चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, ऐसा है वो। आपके घर में केबल लिया आपने 250 रुपये का, लेकिन उसके बाद में आप सर्फिंग कर रहे हो, बोर हो रही है, तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। सडनली आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, कोई ऐसा रोमांस हो रहा है, कुछ रेप हो रहा है, कुछ मारामारी हो रही है, कुछ दारू पिया जा रहा है, कुछ डकैती हो रही है, जो आपको देखना नहीं चाहिए। लेकिन वो एक बार बोलते ना, जैसे वेश्या को घर में बिठाया, लाके बिठाया आपने, तो वेश्या चुप बैठेगी क्या? वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी जिससे आपको पाप करने में मजबूर करेगी वो। तो इसलिए हमारे गुरुदेव, हमारे जितने आचार्य हैं, वो कहते हैं कि घर में टेलीविजन लाना मतलब वेश्या को घर में आके बिठाना, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, उसी को आके घर में बिठाया, तो व्यभिचार होगा ही, गलत काम होगा ही। आगे कहा गया है, वन शुड नॉट फॉल्सली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ द ग्रॉस मटीरियल बॉडी। खुद को शरीर समझना सबसे बड़ा इल्यूजन है, सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन खुद को आत्मा समझना चाहिए, खुद की पहचान समझनी चाहिए। यानी बहुत लंबा लंबा है ये, इसमें 20 आइटम हैं, लेकिन इतने भी काफ़ी हैं आज के लिए। इस पर किसी का प्रश्न है, कोई पूछ सकते हैं? ये भी बहुत हैवी है इतना पालन करना भी, क्योंकि हमारे अंदर प्रवृत्ति इतनी अंदर छुपी हुई है अपनी ना। अभी अच्छा सुन लिया आपने, यहाँ से बाहर निकल गए, वहाँ जाकर झगड़ा कर सकते हैं आप तुरंत किसी बात पर, या ऐसा कुछ देखा, ऐसा क्यों देखा मुझे आपने, या मेरे टेबल पे क्यों रखे रखा है इसको, इतना गंदा करके रखा है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अंदर की जो गंदगी है ना, वो जब तक नहीं निकलती बाहर, तो ऊपर से कितना भी पाउडर लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फॉरन लोग क्या करते हैं, फॉरन में क्या करते हैं, कभी कभी हफ्ते में एक बार स्नान करते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी रहती है ना उधर, वो स्नान करना तपस्या है बड़ी। तो रोज क्या करते हैं, स्प्रे मारते हैं उसके ऊपर। इसलिए ना आप जाओगे ना फॉरेन कंट्री में, आपको सच बोल रहा हूँ, झूठ झूठ नहीं बता रहा हूँ, लोगों के पास जाओगे ना तो आपको बहुत गंदी सेंट की स्मेल आएगी, क्योंकि शरीर की गंदगी का स्मेल और सेंट का मिक्स आपको एक स्मेल आएगा। लेकिन भारत का भिखारी भी है ना, वो कहीं रेलवे में जाके छुपके स्नान करके आएगा, लेकिन स्नान जरूर करेगा, विशेषता है। और अरब कंट्री में जाओगे तो वो भी जुम्मे जुम्मे स्नान करते हैं मैं देखा हुआ है सबका। लेडीज जब आते हैं ना बुरखा पहन के, तो बुरखे को इतनी बदबू आती रहती है ना, बाप रे क्या बताऊँ। अंदर बहुत पॉश कपड़े पहनते हैं, लेकिन बुरखा वही पहनते हैं जो 8 दिन से पहना हुआ है, ये सब हमने देखा हुआ है। तो ये सब आलस्य कलयुग का लक्षण है। वैसे ही जब तक हमारे मन में गंदगियां छुपी हुई है, तब तो ऊपर से आप कितना भी पॉलिश करो उसको, वो बाहर आएंगे कभी ना कभी। इसीलिए कहते हैं हम लोग, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। क्या कहते हैं कि जब भगवान का नाम लेते हैं ना, तो अंदर की गंदगी साफ हो जाती है, तभी जाके स्वभाव बदलता है आदमी का। जब तक बुरी प्रवृत्तियां अंदर से साफ नहीं होती है, तब तक स्वभाव बदल नहीं सकता आदमी का। और भगवान की भक्ति करने के बाद में बुरे बुरे लोगों का स्वभाव बदलते हुए हमने देखा है। हमारे मंदिर में ऐसे कितने लोग हैं, हमारे मंदिर में एक ऐसा भक्त था, बताओ सॉरी उसके आपको, कि हृदय परिवर्तन क्या होता है, आपको रियल स्टोरी है, मेरा अच्छा दोस्त है वो आदमी। किसी एक व्यक्ति ने, मतलब एक औरत ने उनको कांटेक्ट किया और बोला मेरा पति जो है ना, पति ये हरे कृष्ण में जा रहा है, तो मेरे को पसंद नहीं है वो, और एक वकील है खार में, उसने उसको बहकाया है। वो खार में जो वकील है ना, वो उसके संगत में वो हरे कृष्ण का उसको नशा लग गया है। तो मैं इतना परेशान हूँ उसकी वजह से, मैं देखती हूँ जाके मंदिर में उठा के लाके लेके आता हूँ मेरे पति को। मैं वो औरत मैं देखा हुआ है, कभी कभी 5 बजे मंदिर में आके चिल्लाते हुए एंट्री करती है और पति का कॉलर पकड़ के घर ले जाते हैं उसको, यहाँ पर नहीं आना। कई बार तमाशा किया मंदिर में उसने, लेकिन पति फिर भी आता था। तो एक दिन क्या किया, वो पति पत्नी ने ये आदमी को कांटेक्ट किया, वो आदमी गुंडा था, सुपारी लेके लोगों को मर्डर करने का उसका ऐसे कई कामों से एक काम था उसका। तो उसने कांटेक्ट किया, बोला कि वो खार के वकील है ना, उसका नंबर ये है, उसका एड्रेस ये है, उसको आपको ख़त्म करना है। तो ये आदमी है ना खार में इसका पता वेता लेके पैसा सुपारी लेके खार के प्रोग्राम में आया था कि कौन है वो वकील देखने के लिए, और इंतजार कर रहा था कि मैं देखता हूँ कौन है एग्जैक्टली, क्या है इधर, क्या चलता है, वो आदमी इसका पति क्या करता है इधर आके, वो बैठ गया उधर। और एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, और वहाँ सुना सब कुछ, तो उसका हृदय चेंज हो गया और वो खुद डिवोटी बन गया। वो अभी उधर मंदिर के पास में रहते हैं। एक नंबर का गुंडा था वो आदमी, वो शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे के गोदाम में काम करता था। कहे का गोदाम? कपड़े का गोदाम, कपड़े का गोदाम नहीं, नोटों की थप्पी का गोदाम, जो अंडरग्राउंड होता है उसमें खाली ऐसे। आपका कैसा रूम है ये? जब एक दो तीन चार दस कबड़ तो है यहाँ पर, पीछे भी दो कबड़ है ना, वो केवल नोटों से भरे रहते थे। और तो आपके कबड़ तो इतनी तक ही है, इधर छः फुट ही है, वो पूरा ऊपर तक, और दीवार के एक एक इंच इंच नापा हुआ, सब कबड़ भरे हुए हैं, और बीच में भी कबड़ की लाइन है। जैसे होता है ना स्टोर में, कैसा होता है अंदर से जा सकते हैं ऐसे घूम के, सब जगह कबड़ ही कबड़, और सब में नोटों के थप्पे। ऊपर से फ़ोन आएगा, इसको 2 लाख दो, तो निकाल के देने का, उसका हिसाब रखने का, वो काम करता था वो आदमी। तो जब वो हरे कृष्णा का भक्त बना ना वो आदमी, तो उसको धमकी दिया गया शिवसेना की तरफ से, तेरे हाथ पांव तोड़ डालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम अच्छा आदमी बनेगा तो सब बताएगा ना इधर क्या चल रहा है इधर क्या क्या चला है इतना दिन, पब्लिक को जाके बताएगा। तो बोलेगा आप तोड़ दो हाथ, लेकिन मैं जा रहा हूँ छोड़ के आपका जॉब, तो छोड़ दिया उसने। और इतना हरहुन्नरी आदमी है वो, पहले भी किसी का पासपोर्ट का बना देने का, किसी का इधर का कॉन्ट्रैक्ट बना के कुछ काम करके देने का, और नौकरी नहीं करता है, ऐसे ही पैसे कमाता है, और रिच आदमी है बहुत, पहले भी रिच था अभी भी रिच है, नौकरी नहीं करता है, लेकिन ऐसा बोलो हर काम है, मतलब क्या सब में उसको कुशलता है। कुछ भी आपको पासपोर्ट नहीं बन रहा आपका, चलो आ जाओ मैं कॉन्टैक्ट करके देता हूँ आपको, हमको बोलते हैं आप पहुँच जाओ वहाँ पर, मुझे वहाँ से फ़ोन करो, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, आपका पासपोर्ट तुरंत बना के देंगे। तो कितना लोगों का डिवोटी का बना दिया पासपोर्ट उसने, पहले वर्ली में ऑफिस था वहाँ पर भी बना दिया, थाना में भी कॉन्टैक्ट है उसके, है कला किसी की, पहले भी थी अभी भी है, लेकिन पहले उसका गलत इस्तेमाल करता था वो। और जैसे ही ऐसे किसी को मारने के हेतु अंदर आ गया तो वो डिवोटी बन गया। ये कहानी कहाँ से निकली मेरी? परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होता है भगवान का नाम लेने से, ये बता रहा हूं मैं आपको। वो था ना वाल्या कोड़ी, उसको वो हंटर था, पारदी, पारदी बोलते उसको, पासे पारदी मतलब क्या, शिकारी, जानवर को मारने का और फिर उसको बेचने का उसका मांस। तो उसकी आदत थी, उसको ना ऐसी आदत थी कि जानवर को आधा मारने का और तड़पते वो देखने का और मजा करने का, उसको बहुत तड़पेगा, बहुत तड़पेगा तो और एक बाण मारेगा उसको, और तड़पेगा फिर बहुत तड़पने के बाद में फिर ऐसे आपको रास्ते पर बहुत जानवर तड़पते हुए मिलेंगे बाण लगे हुए, बाद में फिर एक एक एक्स्ट्रा बाण मारते जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद मार डालेगा उनको, ऐसा उसका आदत था, इतना भयंकर आदमी था वो। तो एक दिन उसको नारद मुनि मिले और बोले कि तुम इतना सब जानवर को मारते हो, इतना दर्द देते हो उनको, पता है क्या तुम लोग उसका रिएक्शन क्या होगा आपके ऊपर? इतना दर्द दिया ना, सब दर्द वापस आएगा आपके ऊपर, सबका दर्द आएगा। उसको दिव्य दृष्टि दिया और दिखाया वो सारे जीव जो तुमने मारे हैं ना, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं बदला लेने के लिए, सबको दिखाया, देखो सब वेट कर रहे हैं आपके लिए, जैसे आप आगे भविष्य में जाओगे ना तो सब आपका बदला लेंगे, अगले जन्म में भी बदला लेते रहेंगे आपसे। तो बोलता नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मेरे परिवार के लिए करता हूँ, मेरा कर्तव्य है, मैं उनको खाना बनाना मेरे लिए कर्तव्य है, इसलिए मैं करता हूँ। बोले जाके आपके वाइफ को बच्चों को पूछ के आओ कि तुम मेरे ये कर्म में भागीदार हो क्या, कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो घर पर जाते हैं बोलते हैं कि ये सब ऐसे ऐसे हो गया आज, तो उन्होंने मुझे आपको पूछने को बोला है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ पाप आपके लिए कर रहा हूँ, आप इसके फल के भागीदार हो क्या? तो पत्नी और बच्चे बोलते हैं हमको नहीं पता, हमने थोड़ा आपको बोला कि आप पाप करके कमाओ, हमको नहीं, हम लोग आपके भागीदार नहीं हैं, प्लीज़ डोंट इंक्लूड अस, हमको शामिल मत करो उसके अंदर। तो उसका ट्यूबलाइट जल गया मन में, अरे बाप रे, मैं सोच रहा था मैं इनके लिए कर रहा हूँ, और ये सोच रहा था कि वो मुझे भागीदार बनेंगे, लेकिन भागीदार नहीं बनने वाले हैं, हरे कृष्णा। तो फिर छोड़ दिया उसने, उस दिन से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। ओके, उसके बाद में बहुत समय के बाद में वापस नारद मुनि उसको मिलने को आए। तो ये आदमी क्या ना ऐसा यहाँ जंप कर रहा है, उधर जंप कर रहा है, इधर जंप कर रहा है, उधर जंप कर रहा है। तो बोले ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलते रास्ते में चींटियाँ है, उस पर मेरा पाँव नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैं जंप मारते मारते आपके पास आकर मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी देखो, पहला वो 50 बाण मार के एक जानवर को मारने के लिए ऐसा धीरे धीरे मारता था उसको, अभी चींटी को भी मारने को तैयार नहीं हो जो ऐसे ही पैर के नीचे आने वाले, लेकिन वो चींटी का भी रास्ता देख के ऐसा ऐसा चल रहे हो जंप मारते हुए। इतना बड़ा परिवर्तन उसके अंदर हुआ, क्यों हुआ? भगवान का नाम लेने की वजह से। और ये परिवर्तन नहीं हुआ, उसी आदमी ने आगे जाकर रामायण लिखा नारद मुनि के आदेश के अनुसार। रामायण का ऑथर है वो, मुनि बन गए मुनि। ये कब कैसे होता है? जब आदमी भगवान के नाम का सहारा लेता है ना, तो उसके अंदर की गंदगी सब खत्म हो जाती है। तब जाके जो सारा स्वभाव दूसरों को बाण मार मार के कष्ट देने का और कष्ट दे दे के मारने का, वो चेंज हो गया। अभी चींटी को भी पैर रखने को तैयार नहीं है, जो अनजाने में मरने वाला है उसको भी बचाने का कोशिश कर रहे हैं। इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है? इतना दुष्ट और क्रूर आदमी था, इतना दयालु और करुणा वाला बन गया। तो ये सब कहानी क्यों सुनते हैं हम लोग? हमारे अंदर भी हम लोग शायद इतने दुष्ट नहीं होंगे कि रोज किसको बाण मार के किसी को काट रहे हैं, ऐसा रोज तो नहीं कर रहे हम लोग, या कभी करते भी नहीं होंगे, जिंदगी भर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी छोटे स्वरूप में हमारे अंदर स्वभाव होता है कि मैं अधिकारी हूँ तो इनको मैं कष्ट दूंगी, ये मेरे फेवर में नहीं है, मेरी बात सुनते नहीं है तो मैं उनको हमेशा टोकते रहूँगा, और ये मेरे सुनते हैं तो मैं हमेशा मेरे पक्ष में लूँगा, जो मेरे खिलाफ है उसको हमेशा गोली मारते रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं उनको, कष्ट देते रहूँगा, उनके पंख काटते रहूँगा हमेशा। और जो मेरे सुनते हैं और मेरी बातों को छुपाते हैं, अच्छी तरह से मेरे फेवर में हैं, उनको मैं फेवर करूँगा, उनका अच्छा रिपोर्ट दूंगा। ये हमारे अंदर जो दोष है ना, ये भी हमारे जीवन में कष्टकारी है। शत्रु और मित्र के अंदर भेद करना, शत्रु को हमेशा नुकसान करने का प्रयास करना, मित्र को हमेशा बाहर जाके फेवर करना, ये हमारे स्वभाव के दोष हैं। सारे दोष भगवान का नाम लेके नष्ट हो सकते हैं। ये बात शुरू यहाँ से हुई थी कि स्वभाव अगर बदलना है किसी को तो भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी आपको। और कोई भी आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और ये दवाई और वो दवाई और योगा और ये प्राणायाम करके स्वभाव बदलता नहीं करना, क्योंकि स्वभाव कब बदलता है पता है आपको? स्वभाव किससे बनता है मालूम है आपको? स्वभाव एक मिक्सचर है तीन चीज का। जितना आपका पाप का रिकॉर्ड है, जितना आपका पाप का रिकॉर्ड है उसका सार, जितना आपका पुण्य का रिकॉर्ड है उसका सार, और आपकी बची हुई डिजायर्स जो है ना, इच्छाएं, आपके क्या क्या इच्छाएं बची हुई उसका सार मिलकर आपका स्वभाव बनता है। तो बदलता कैसे है? जब भगवान का नाम लेते हैं तो पाप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो उसका मिक्सचर बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर आपके अंदर भेल बनाई हुई है, तो मैंने ऐसा जादू कर दिया कि उसका तीखा मिर्ची का चटनी जो है वो गायब हो गया उसके अंदर से, तो भेल तीखा लगेगा आपको? नहीं लगेगा, मीठा ही लगेगा, क्योंकि तीखा चटनी गायब हो गया उसमें से, और मैंने कुछ कर दिया और मीठा चटनी भी गायब कर दिया, तो वो मीठा भी लगेगा नहीं, तीखा भी लगेगा नहीं, है वो भेल लेकिन पाप और पुण्य नष्ट हो गया उसके अंदर से। समझ आपको आया? अभी भाभी बची हुई क्या है? डिजायर है। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो आपकी डिजायर भी चेंज हो जाएगी। पहले आप पागलपन सोचते हैं कि मेरा शादी जो है ना वो आलिया भट्ट से होना चाहिए, ऐसे ही सोच रहे थे बचपन से, शादी करूँगा तो उससे ही करूँगा, कुछ भी करो, मिलियनेयर बनूंगा मैं, करोड़पति बनूंगा, लेकिन शादी उससे ही करूँगा। जब भक्त बनेंगे तो आपको लगेगा मैं तो पागल था यार, किधर आलिया भट्ट, किधर मैं, क्या। हमारी बिल्डिंग में से कितनी लड़कियाँ थी जिनके पास संदीप पाटिल के 125 फोटो थे, 125 फोटो, और रोज देखते थे उसको, वो जड़ लड़कियाँ 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स ने, संदीप पाटिल मैं इसके साथ विवाह करूँगी। आप तो अभी तो ये ज़माने के आप लोग हैं, आप लोगों में से गुड्डी पिक्चर किसी देखा है? किसने गुड्डी? गुड्डी जया भादुर का पिक्चर था, हमारे बचपन का था। तो वो पिक्चर में दिखाया है कैसे स्कूल की लड़कियाँ ना हर एक के लड़के में कोई ना कोई एक हीरो बैठा हुआ है। ए इसको डिस्टर्ब मत करना, यहाँ अमिताभ बच्चन बैठा हुआ है, ए इनको मत डिस्टर्ब करना, ये तो विनोद खन्ना, ये राजेश खन्ना, ये धर्मेंद्र, ऐसे एक एक लड़के का फिक्स है माइंड में, उसका ही पूजन कर रही है मन में कि वही मेरा पति होगा। इसको भ्रम कहते हैं ना, भ्रम, किधर धर्मेंद्र। फिर धर्मेंद्र खुद आता है पिक्चर में और वो लड़के को बोलता है, अरे ये सब पागलपन छोड़ो, मैं शादीशुदा हूँ, मैं फिल्म में काम करता हूँ, मेरी पत्नी है, दो बच्चे भी हैं मुझे। तभी वो लड़की सोचती, नहीं 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 वही मेरा पति होगा। बाद में पिक्चर में दिखाया कैसे फिर वो उसको काउंसलिंग करते करते समझाते हैं कि वो एक्चुअली सब भ्रम है सब ये। लेकिन बचपन में कैसे हीरो मन में रहता है ना, फिट रहता है मन में, तो वैसे हमारे मन में जो इच्छाएं हैं जो इररिलेवेंट है, मतलब कैसे योग्य नहीं इच्छा है वो। जैसे हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके मन में इच्छा थी कि झटपट श्रीमंत होना चाहिए, अच्छी नौकरी है, बैंक में ऑफिसर है, अच्छा इनकम हो रहा है, घर है, सब कुछ है, लेकिन समाधान नहीं है। उसको रोज ऐसी इच्छा थी कि रोज 5 स्टार का होटल का खाना आना चाहिए, खाने के लिए डब्बा देता ना बीवी, डब्बा देती ना, अच्छा घर सा बना के किसी को दे देता था, और रोज होटल का 5 स्टार का खाना मंगाता था। लेकिन उतना कैपेसिटी नहीं था, तो बोलता है कि 5 स्टार का होटल खाने के लिए रोज इतना पैसा चाहिए, फिर ये करने के लिए इतना पैसा चाहिए, हर दिन हर हफ्ते में हवाई जहाज से कहीं घूमने को जाना चाहिए, इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तो उसने फिर गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू किया, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ पर जुगाड़ में डालो, इधर ही करो, इधर मल्टीप्लाई करो। एक दिन आत्महत्या करना पड़ा उसको, क्योंकि एक गुंडे ने उसको ऐसा धमकी दिया कि जो कर्जा दिया है ना वापस मांगने को आने का नहीं, पाँव तोड़ दूंगा और घर जला दूंगा तुम्हारा। तो डर गया, इतना नुकसान हो गया कि फिर वो चुकाने के लिए बैंक से, बैंक में काम करता था ना, उसके कैशियर से काउंटर से पैसा चुरा के भाग गया। फिर वारंट लग गया पीछे, क्योंकि वो पैसा चुकाने के लिए किसी किसका लिया था ना, तो उसको कर्जा दे दिया, तो आपसे सबके लिया था कॉन्ट्रीब्यूशन, आप लोग मांगने को आ रहे हैं उसका पैसा दो, तो चुकाने के लिए बैंक से कैशियर से पैसा उठाया। फिर पुलिस पीछे लग गई, पुलिस से पीछे पीछे बचाने के लिए कहीं भाग गया, वहां जाके आत्महत्या कर गया। शुरू कहाँ से हुआ था? वो इच्छा से शुरू हुआ था, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे हेलीकॉप्टर से घूमना है और 5 स्टार का खाना खाना है रोज। ये सारी जो बुरी इच्छाएं हैं ना, वो भगवान का भक्त बनने के बाद में अपने आप खत्म हो जाती है। वो समझ में आता है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, इसके पीछे लगना नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं, अच्छे घर से होते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, खाना पीना सब अच्छा है, पिताजी का प्रॉपर्टी सब अच्छा है, लेकिन उसको फिल्म स्टार बनने का रहता है, कैसा भी करके मुझे फिल्म स्टार बनना है। मैं ये सब आपको मेरे अनुभव की बातें बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ बता रहा हूँ, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ आपको, रियल स्टोरी बता रहा हूँ। परेशान है लोग, बोले इतनी प्रॉपर्टी है, इतने होटल्स हैं, इतने दुकान हैं, चलाओ ना उसको। नहीं, मेरे को नहीं करना, मेरे को फिल्म स्टार ही बनना है। शादीशुदा आदमी अभी फिल्म स्टार बना है और सब घर के दुखी है उसकी वजह से, पत्नी भी दुखी है, क्योंकि क्या फिल्म स्टार में क्या होता है, फिल्म स्टार एक पिक्चर आने के बाद क्या होता है, कोई और लड़की को वो गले लगा रहा है, उसको चूम रहा है, उसके बाद नाच कर रहा है, और पत्नी भी वो फिल्म देख रही है, तो कैसा लगेगा उसको, अच्छे घर के लोगों को। लेकिन मन में फिट है कि फिल्म स्टार ही बनना है। तो ये सारी जो बोलते ना नाजायज इच्छाएं जो होती है, वो भगवान का नाम करने से नष्ट हो जाती है। सबसे पहले भगवान का नाम लेते ही पाप नष्ट हो जाता है ऑन द स्पॉट, और धीरे धीरे बुरी इच्छाएं भी नष्ट होने लगती हैं। तो मैंने क्या बताया, स्वभाव कैसे बनता है, पुण्य कर्म, पाप कर्म और आपकी इच्छाएं, ये मिलके स्वभाव बनता है। अब भगवान का नाम जप करते ही पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं और बची हुई इच्छाएं जो है वो ट्रिम हो जाती है, मतलब बुरी इच्छाएं खत्म होती है और अच्छी इच्छाएं बचती हैं। इसका मतलब स्वभाव बदलता है। जानवर को मारने वाला आदमी बाद में चींटी को भी नहीं मारता है, लोगों को दंडवत करता है, संत बन जाता है, ये भगवान का नाम का प्रभाव है। तो इसलिए हम सब लोगों को जिंदगी में अगर अच्छी तरह से रहना है, दूसरों को कष्ट देना नहीं है, तो आपका स्वभाव बदलना पड़ेगा। स्वभाव तो घर से आपको सिखाया है, हमेशा चीटिंग करके पैसा कमाओ, कुछ ना कुछ चीटिंग करना ही चाहिए, माल बेचने के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही चाहिए, झूठ मूठ का माल बेचना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट धंधा होना चाहिए। ऐसा बनिया अपने बच्चे को सिखाता है कि नहीं, MRP लिखा है इतना इतना है, उससे बोलता है देखो भाई बोतल पे लिखा है 12 रुपया, देख 15 रुपये बोतल बेचेगा पानी का, पैसा है तो लो मत लो, ट्रेन में बैठे तो क्या करेंगे, बोतल में लेकर 12 रुपया, नहीं साहब चाहे तो लो मत लो, 3 रुपया जेब में, 12 रुपया कंपनी में जमा कर दें। तो ये जो ट्रेनिंग मिलती है ना हमको घर से, दुर्भाग्य से, वो सब बदल सकती है।
हरे कृष्णा।